वैभवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 2।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं कवियघनगायिकं मम भवीयजनानन्दकारिणं वीरं नमियो नमभनिष्टामो
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीयुषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 13वीं पुस्तक अपनी शुरू हो गई है और ये 11वें नंबर का अर्थाधिकार है जिसका नाम है दर्शन मोह की क्षपणा। 12वीं पुस्तक में हमने दर्शन मोह की उपशमना के बारे में विस्तार से देखा था सम्यक अनियोग द्वारा। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 15 पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात देखी थी क्षपणा में कि कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य गति का जीव ही नियम से दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ करने वाला, इसको प्रस्थापक कहा है, और निष्ठापक यानी पूर्ण करने वाला चारों गतियों में हो सकता है। क्योंकि जब कृतकृत्य वेदक अवस्था प्राप्त होती है तो उस अवस्था में मरण हो सकता है। जब तक क्षपणा का प्रस्थापक कार्य चल रहा है तब तक मरण नहीं होता, यह नियम है। अनंतानुबंधी की विषय योजना पहले हो जाती है और बाद में दर्शन मोह की क्षपणा एक एक ही हो जाती है। अनंतानुबंधी की विषय योजना होने के बाद तो मरण हो सकता है किसी का। तो एक बार मिथ्यात्व का संक्रमण गुण संक्रमण शुरू हो गया है क्षपणा के लिए, तब अभी उसका मरण नहीं होगा। कृतकृत्य में मरकर वो पूर्वज बद्धायुक्त होगा तो जो आयु बांधी है वहां चला जाएगा। निष्ठापक चारों ही गति में होता है। उसके बाद ये भी बात बताई थी कि उनके अंतर्मूर्त काल तक उसकी क्षपणा होती है और दर्शन मोह का क्षय हो जाने के बाद यानी जो क्षायिक समय दृष्टि है वो देव और मनुष्य संबंधी नाम कर्म और आयु कर्म को बांधेगा, ये भी बात उन्होंने स्पष्ट की थी। जो दर्शन मोह की क्षपणा करता है प्रारंभ करता है उस भव को छोड़कर अधिक से अधिक 3 भव हो सकते हैं, जीव निर्वाण को नियम से पहुंचता है उस छोड़कर। यानी यदि वो भोगभूमि में गए तो यदि देव में जाता है तो देव में जाके एक वापस मनुष्य होकर मोक्ष चला जाए, नरक बांधी होगी तो नरक में जाकर मनुष्य होकर मोक्ष चला जाए। मनुष्य या तिरंचायु पहले बांधी हो तो भोग भूमि का मनुष्य या तीरंच होकर फिर देव में जाकर फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। कोई ऐसा भी है कि उसी भव में मोक्ष जाने वाला उसी भव में क्षायिक उत्पन्न किया है, आयु का बंध ही नहीं करेगा और तद्भव मोक्षगामी होगा। इस तरह से उसके अलग अलग हमने विकल्प देखे थे। उसके बाद ये बात हमने देखी थी क्षायिक समय दृष्टि जीव कौन से गति में कितने पाए जाते हैं। तो तिरियंचों में असंख्यात, देवों में असंख्यात, नारकियों में असंख्यात और मनुष्यों में संख्यात 1000। क्योंकि वहां इकट्ठे होते ना, यहाँ तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव दर्शन मोह की क्षपणा करते हैं। तो उसमें से मरकर अन्य अन्य गतियों में जाएंगे या उसी भव में मोक्ष भी जाएंगे। तो कहते कि पृथक्त्व वर्ष में एक जीव तो उस गति में जाएगा ही जाएगा, तिरियंच में जाएगा, देव में जाएगा, नरक में जाएगा। तो नरकों की जो पहले नरक में जाएगा तो पहले नरक में जाएगा और वहाँ की तो आयु तो सागरों में होती है, असंख्यात वर्षों की होती है। तो उसमें कितने छः महीने में या पुस्तक वर्ष में भी एक जीव अगर समझे तो भी वो कितने असंख्या जीव हो जाते हैं। देवों में भी ऐसा ही लेना, भूभूमियों के मनुष्यों की भले असंख्या वर्ष की आई है परंतु इंक्लूडिंग उनको लेते हुए सभी सभी मनुष्य कितने तो संख्या थी। इसलिए मनुष्य समय दृष्टि कितने समय दृष्टि नहीं क्षायिक समय दृष्टि तो संख्या हजार होते। इतनी बातें तो अपनी हुई थी। उसके बाद हमने ये भी बात देखी थी कि वो जो सपना का कार्य शुरू हुआ तो तीन शुभ लेशा में होगा, यानी कम से कम तेजो लेशा का जगन्यांश तो रहेगा ही रहेगा सपना करने वाले की बात, मनुष्य ही करता है। और कृतकृत्य में मरने की अपेक्षा जिसने नरकायु तिरंचाई आदि बांधी है उसके कपोत्लेशा हो जाती है कृतकृत्य वेदक अवस्था, परंतु जब तक वो प्रस्थापक है तब तक उसकी शुभ लेशा रहती है। हाँ, उसके बाद हमने ये बात देखी थी कि इसमें तीन करण परिणाम होते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवर्तनीकरण। उसके लक्षण तो हमने उपशमना के 12वीं पुस्तक में ही हमने तीनों ही करणों का स्वरूप बहुत विस्तार से देखा था। अभी हम 15 पृष्ठ पर आ गए। देखो ऊपर जो सूत्र लिखा है ना 15 पुस्तक पर, जो तीन सूत्र है उसमें बोल्ड अक्षर में इन तीनों करणों के लक्षण जिस प्रकार उपशामक की प्ररूपणा में कहा है उसी प्रकार, उपशामक यानी दर्शन मुख का उपशामक, वहां इसका विस्तार से वर्णन हो गया। उसके बाद वो जो सूत्र है उसमें कहते हैं अध प्रवृत्त करण के अंतिम समय में इन चार सूत्र गाथाओं का कथन करना चाहिए, यानी यहाँ पर भी और चार सूत्र गाथाओं का वर्णन चलेगा। अब वो क्या है उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि नीचे का जो लास्ट सूत्र है वहां से अपना प्रारंभ होगा। ऊपर पहले सूत्र पढ़ते हैं, दंशन मोह व सामगस्त, ये एक नंबर दिया। काणी व पूव बद्धानी, दो नंबर। के अंसे झीयदे पूवम, तीन। और किम छिदियाणम कम्माणी, चार। अब इसका हिंदी हम अनुवाद देखते हैं। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव का परिणाम कैसा होता है, किस योग कषाय और उपयोग में विद्यमान उसके कौन सी लेशा और वेद होता है, ये एक नंबर। पहले हमने जो गाथाएं देखी थी उसमें तो नियम ही बताए थे ना उन्होंने,
तीनों वेद होते हैं।
नहीं, ये जो गाथाएं बता रहे वो नहीं हुई थी ना, अभी आगे आने वाली की बात है।
उपशामक का देखा था ना हमने, ये
उपशामक में देखा था। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्वबद्ध कर्म कौन कौन है, वर्तमान में किन कर्मांशों को बांधता है, कितने कर्म उदयावली में प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मों का प्रवेशक होता है, ये दूसरी गाथा। फिर तीसरी, दर्शन मोह की क्षपणा के सम्मुख होने पर पूर्व ही बर हो गया, होने पर पूर्व विद्यमान दर्शन मोह की क्षपणा के सम्मुख होने पर पूर्व ही बंध और उदय रूप से कौन सा कर्मांश क्षीण होते हैं, आगे चलकर अंतर को कहां पर करता है और कहां पर किन किन कर्मों का क्षपण करता है, क्षपणा करने वाला वही जीव किस स्थिति वाले कर्मों का तथा किन अनुभागों में स्थित कर्मों का अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थान को प्राप्त होता है, इन चार सूत्र गाथाओं का यहाँ पर व्याख्यान करना चाहिए, यह सूत्रार्थ समुच्चय है। तो वहाँ पर शंकाकार पूछता है, ये सूत्र गाथा है तो चारित्र मौखिक क्षपणा अनुयोग द्वार से संबंध रखने वाली है, उनका यहाँ कथन करना कैसे सत्य है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत दीपक रूप से वहाँ इनका कथन किया है। अतः दर्शन मुख की उपशामना, दर्शन मुख की क्षपणा, चारित्र मुख की उपशामना और चारित्र मुख की क्षपणा, इन चारों अनुयोग द्वारों में साधारण रूप से चूर्णी सूत्र विषय इन चार गाथाओं की प्ररूपणा विरोध को प्राप्त नहीं होती, यह सिद्ध हुआ। और इनका व्याख्यान करने पर दर्शन मुख की उपशामना अनुयोग द्वार में किए गए व्याख्यान के समान है, तो भी जो थोड़ी सी विशेषता है उसका अनुगम करते हैं। यथा एक सपना में तो अंतर विंतर तो नहीं पड़ेगा, तो थोड़ी सी जो कुछ विशेषता है वो यहाँ बताएंगे। यानी ये जो गाथाएं हैं वो बाद में लास्ट में आने वाली है इसका अर्थ। तभी तो शंकाकार ने पूछ लिया, शंकाकार के मुंह में इसीलिए क्वेश्चन डाला कि ये कहाँ से आई गाथा, कहाँ क्या है, तो उसका संदर्भ हमें भी पता चले। अंत दीपक ने वो तो चारित्र मुखी क्षपणा में ये बातें बताएंगी, परंतु ये सारे प्रश्न सभी ये चारों ही अनुयोगों में लागू होते हैं। प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में तो प्ररूपणा भेद है नहीं, क्योंकि पहले में क्या पूछा था, उस परिणाम कैसे होते, कौन सा कषाय है, कौन सा उपयोग है, कौन सा विधेय वगैरह वगैरह, तो कहते परिणाम विशुद्ध होता है। अंतर्मूर्त पहले से ही विशुद्ध परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि से उत्तरोत्तर विशुद्ध होता हुआ आया है। एक अंतर्मूर्त पहले ही विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि होती है। इस प्रकार ऐसी एक रूप प्ररूपणा, दर्शन मुख की उपशामना और क्षपणा, इन दोनों अनुयोग द्वारों में समान रूप से देखी जाती है। समानता क्या है, असमानता क्या है, उसकी बात यहाँ भी चलेगी। प्रथम सूत्र गाथा के उत्तरार्ध में आए हुए योग इस पद की विभाषा अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचन योग या औदारिक का योग होता है, अन्य का योग संभव नहीं है। मंजूबेन, दर्शन मुख की उपशामना में कौन कौन से योग होते हैं? हाँ, वैक्रेक भी होगा, और यहाँ तो मनुष्य के ही होता है, इसलिए औदारिक लिया। ख्याल में आई बात, क्या डिफरेंस है? कषाय पद की विभाषा की अपेक्षा नानात्व अर्थात भेद नहीं है, क्योंकि अन्यतर कषाय होती है और वह नियम से हीयमान होती है, हीयमान घटती चली जाती है, उसका अनुभव घटते हुए उदय में आता है, वर्धमान नहीं। इस प्रकार इस अपेक्षा से दोनों जगह भेद का अभाव है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ कोई भी किसी एक कषाय का तो उदय तो रहेगा ही वहां पर। उपयोग पद की विभाषा इस विषय में नानात्व अर्थात भेद नहीं है, क्योंकि नियम से साकार उपयोग होता है। इस प्रकार इस प्ररूपणा का दोनों स्थलों पर समान रूप से अवस्थान पाया जाता है। अथवा अन्य उपदेश के अनुसार श्रुतज्ञान मतिज्ञान अचक्षुदर्शन या चक्षुदर्शन रूप उपयोग से उपयुक्त होता है, यह कहना चाहिए। लेशा पद की विभाषा इसमें भी नानात्व नहीं है, क्योंकि तेज पद्म और शुक्ल लेशाओं में से नियम से वर्धमान लेशा होती है, यानी विशुद्धि बढ़ती है तो लेशा का जो विशुद्धि वाला अंश बढ़ रहा है। इस प्रकार इस कथन की अपेक्षा दोनों स्थलों में भेद नहीं पाया जाता। वेद कौन होता है इस पद की विभाषा इसमें भी नानात्व संभव नहीं है, क्योंकि अन्यतर वेद होता है। यहाँ जो वेद की बात है वो तो भाव वेद की ही बात है, क्योंकि वो नपुंसक वेद वाला शायद समय को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, बोलो,
करेगा ना,
क्योंकि हमने देखा है नवे गुण स्थान तक उसका श्रेणी भी जाता है, मोक्ष भी जाता है, तो उसी भाव में तो क्षायिक होगा। पहले से बहुत से क्षायिक लेके आएगा कोई नपुंसक वेदी
नहीं,
क्योंकि जो सम्यक के साथ जन्म लेता है उसके ना स्त्रीवेद होता है ना नपुंसक वेद होता है। फिर भी स्त्रीवेदी और नपुंसक वेदी को उसी भाव में मोक्ष होता है, इसका अर्थ क्या है? उसी भाव में वो साइड समय को प्राप्त करते हैं।
यहाँ पे द्रव्य वेद की कुछ बात
भाववेद की बात लेते हैं हमेशा वेद
नहीं पर द्रव्य से स्त्री वेद वाला भी
अभी उसके संबंध में कुछ डिस्प्यूट है। दोनों उपदेश हमने पढ़े शास्त्रों में ही पढ़े। इस प्रकार इस कथन की अपेक्षा दोनों स्थलों में विशेषता नहीं पाई जाती विशेषार्थ।
यहाँ पे जो आगे तो बताया कि अंतर्भूत पहले विशुद्धि बढ़ती जाती है तो वहाँ पे जो उपशम ने हमने प्रायोगिक लब्धि से जो देखा था विशुद्धि लब्धि और वो कोई क्रम होगा कि विशुद्धि या फिर यथा योग्य होगी चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान से
यथा योग्य ना उससे तो ज्यादा ही होगी ना क्योंकि तो सपना का कार्य है। विशेषार्थ यहाँ चूर्णी सूत्र में जिन चार गाथाओं का निर्देश किया गया है उनमें से प्रथम गाथा के अनुसार दर्शन मोह के उपशामक के परिणाम आदि का जैसा व्याख्यान दर्शन मोह के उपशामक जीव को लक्ष्य कर किया है वह सब यहाँ किंचित भेद के साथ जान लेना चाहिए। भेद इतना ही है कि दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है अन्य गतियों में नहीं। इसलिए यहाँ काय योग के भेदों में से एक औदारिक ओ हुआ है औ करना औदारिक काय योग ही स्वीकार किया गया है। यहाँ उपयोग की चर्चा करते हुए मतांतर का उल्लेख कर जो यह बताया है कि ऐसा जीव श्रुत ज्ञान मति ज्ञान चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इनमें से किसी एक उपयोग में उपयुक्त तो होता है तो इसका यह आशय प्रतीत होता है कि अन्य किसी आचार्य का यह मत रहा है कि ऐसे जीव के अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में उपयोग परिवर्तन भी हो सकता है और उपयोग परिवर्तन के काल में मति ज्ञान चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन भी हो सकता है अदरवाइज श्रुत ज्ञान में ये बात होगी। अब दूसरी गाथा की विभाषा का कथन करते हैं यथा पूर्वबद्ध कर्म कौन है इनकी विभाषा। यहाँ प्रकृति सत्कर्म स्थिति सत्कर्म सत्कर्म लेने ना सत्व ऑलरेडी बंधा हुआ कौन सा कर्म है वहाँ पर कि कौन सा कर्म बंधा हुआ होगा तो शायद समय को नहीं होगा ऐसी भी बात हम सोच सकते हैं। तो कहते हैं प्रकृति सत्कर्म स्थिति सत्कर्म अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म का अनुसंधान कर लेना चाहिए। उनमें से प्रकृति सत्कर्म का अनुसंधान करने पर उसका भंग उपशामक के समान है इतनी विशेषता है इसके अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता नहीं है क्योंकि विसंयोजना उसके पूर्व ही कर लेता है तब जाके ये क्षपणा चालू कर देता है ऐसा कहना चाहिए। सम्यक और समय मिथ्यात्व की सत्ता नियम से है उपशामक के लिए तो वो थी भी या नहीं भी थी या एक की थी हमने वो भी देखा था। आयु कर्म की अपेक्षा मनुष्य आयु नियम से बुज्जमान होकर बुज्जमान प्रभाव संबंधी मनुष्य आयु के साथ शेष तीन आयुएं भी सत्कर्म रूप से भजनीय है यानी बुज्जमान मनुष्यायु के साथ जो बद्धायुष्क होगा तो अन्य तीन आयु में से कोई भी आयु बंदी हो ये बात हो सकती या मनुष्यायु के साथ मनुष्यायु भी बद्धायु हो ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि दर्शन मोह की क्षपणा के पूर्व जिन्होंने उक्त आयुओं का बंध किया है उनकी अपेक्षा उनकी सत्ता स्वीकार करने में विरोध नहीं आता। विरोध नहीं आता का अर्थ है कि पूर्व बद्धायुष्क वाले को भी क्षायिक समय तो होता है ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। नाम कर्म का भंग उपशामक के समान ही है इतनी विशेषता है यानी नाम कर्म का भंग यानी वो सत्ता की बात है। तीर्थंकर और आहार की सत्ता कदाचित है कदाचित है ये कब होगा अच्छा और तीर्थंकर का
चौथे
कौन से जीव कौन सा ऐसा जीव है तीर्थंकर की सत्ता वाला कौन सा जीव है क्षपणा होने का कार्य अभी शुरू होने वाला है
और ऑलरेडी
तीर्थंकर के पास नहीं जाता है परंतु उसकी क्षपणा होगी कि नहीं होगी
ऐसा।
हाँ तो ऐसा कौन सा जीव है कि जिसने क्षपणा नहीं की है और उस तीर्थंकर प्रकृति है उसके पास, ये मेरा प्रश्न है। बोलो मन बोलो। अरे जो दूसरे तीसरे नरक से आने वाले हैं, हाँ। प्रकृति की सत्ता है अभी शायद किया नहीं, वो करेंगे ना प्रारंभ में, उसकी बात है।
नहीं पर ऐसा भी हो सकता है ना, कोई मनुष्य वही गति में, अरे वही भाव में मोक्ष जाने वाला है, तीर्थंकर नाम कर्म का पहले बन किया पीछे भी सपना कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि किसने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का पहले बन किया पीछे शायिक हुआ और पीछे तद्भव वही मोक्ष वही भाव में मोक्ष।
फिर भी उसके तो तीर्थंकर का दूसरे का पाद मूल में जाने जरूरी है ना उसके लिए, पहले बंद किया तो नहीं होता। उसी जीव को होता है कि जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ माँ के गर्भ में आता है जन्म लेता है, उसकी बात है नहीं वो, उसके लिए क्षपणा के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। परंतु जो अभी उसी भव में जाने वाला, उसी भव में जाने वाले की बात कर रहे हैं आप,
ऐसा
तो विदेह क्षेत्र के वाले होंगे ना कोई, ऐसे
हो सकता है ना।
परंतु क्या क्या जो तीर्थ में प्रकृति बांध रहा है अच्छा, यानी अन्य जीव जो अन्य गति में देव गति में से आने वाले तीर्थंकर प्रकृति है और क्षायिक नहीं है, ऐसे ऐसा सुनने में नहीं है, ऐसा
आएंगे ना। हो सकता है
अभी देखेंगे, यानी जिसने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और जो वैदिक समय दृष्टि है वो बाद में क्षायिक करेगा, उसकी बात है। तो जिसके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है उसके लिए अन्य की जरूरत नहीं, ऐसा आया है ना, तो उसने तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी तभी वो उसके तो सान्निध्य मिल गया ना केवली का।
नहीं पर वापस उसको सपना करने के लिए सादित्य होना है,
यानी उसने उसका महत्व जान लिया, ये जो उन्होंने जो कंडीशन बताई थी
अच्छा पीछे जरूरत नहीं है
पता नहीं अभी इसकी बात आएगी तो। वही तो वेदक वाला दूसरे तीसरे में जाता है,
पहले में तो शाही करके ही जाएगा,
पहले में जा नहीं सकता ऐसा कुछ आएगा तो नहीं, शाही वाला कहाँ जाएगा तो पहले में जाएगा, वेदक वाला पहले में भी जा सकता है ना, हाँ उसमें कोई बाधा नहीं, पहले दूसरे दूसरे
नहीं। आपने क्या बताया तीर्थंकर प्रकृति के साथ पहले में शाही किए बिना भी जा सकता है कोई जीव, ऐसे आप बता रहे हैं,
हाँ छुप के जाएगा ना, जैसे दूसरे तीसरे में जाने वाला है छूट के जाता है।
अच्छा मिथ्यात्व में,
मिथ्यात्व में जाके जाते हैं, वेदक के साथ तो कोई जा ही नहीं सकता, ऑर्डिनरी भी वेदक नहीं जा सकता, वो कृतकृत्य होकर जाएगा, उसकी बात अलग है। चलो हम ये बात देख रहे हैं यहाँ पर, तीर्थंकर और आहार द्वीप की सत्ता कदाचित है, यानी जिसने पहले बंद किया है वैसा भी बाद में स्ट्राइक करेगा, इसका अर्थ होता है। इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियों की सत्ता कही है उनकी अपेक्षा स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म और प्रदेश सत्कर्म का अनुसंधान करने पर उपशामक के भंग से यहाँ कोई भेद नहीं है। इतनी विशेषता है उपशामक के स्थिति सत्कर्म से इसका स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणाहीन होता है। उपशामक के स्थिति सत्कर्म में हमने क्या देखा था, अंतर कोड़ाकोड़ी का और उपशमना का कार्य हुआ था, तभी वहाँ भी कांडघात हुए थे। अब यहाँ क्षपणा के जो तीन करण है यहाँ पर भी कांडघात हो गए, तो इसलिए उससे इसकी सत्ता स्थिति भी संख्यात गुणा तीन होगी, यानी संख्यात वे भाग प्रमाण होगी। उसी के अनुभाग सत्कर्म से इसका अनुभाग सत्कर्म अनंत गुणाहीन होता है, ऐसा कहना चाहिए। ये अप्रशस्त कर्मों में लगाना।
तो क्या परिहार विशुद्धि वाला जो जीव है वो क्या सपड़ा, वो सपड़ा का कार्य करेगा, कर सकता है ना?
आहारक वाला नहीं करता,
नहीं करता है, पर उसी लिए मेरे परिहार
जो है
तो
परिहार विशुद्धि के लिए ऐसा कोई नहीं की बात नहीं सुनी है अब तक हमने, कहीं पढ़ने में तो नहीं है कि वो नहीं कर सकता।
प्रथम अक्षर नहीं होता है, पर ये जो सपड़ा का कार्य है
उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता, ऐसे कहीं पढ़ा नहीं है। आहारक के बारे में है, जिसके आहारक का योग चालू है, आहारक शरीर बना है, उस अवस्था में उसके नहीं होता। और यह अनुभाग सत्कर्म भी इसका अनंत गुणाहीन होता है, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म मार्गणा समाप्त हुई। इसी का विशेषार्थ, जिस वेदक समय दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंजना की है, वही दर्शनों की तीन प्रकृतियों की सपना कर सकता है। इसलिए इसके अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता का निषेध कर, सत्ता की बात हुई, सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व की सत्ता के नियम से होने का विधान किया है। सभी सम्यक् दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करते, और ऐसे वेदक सम्यक् दृष्टि भी जीव भी शायद सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें अप्रमत्त संयत गुणस्थान की कभी भी प्राप्ति नहीं हुई है, या जिन्होंने अप्रमत्त संयत गुणस्थान में आहार द्विक का बंद कर बाद में मिथ्या दृष्टि होकर, क्या कहना चाहते हैं? मैंने किसी उसके वो संयम प्राप्त ही नहीं किया था, या जिन्होंने अप्रमत्त संयत गुणस्थान में आहार द्विक का बंद कर बाद में मिथ्या दृष्टि होकर पल्लवम के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल द्वारा उनकी उद्वेलना कर पुनः यथागम इन्हें आगम के अनुसार वेदक सम्यक को प्राप्त किया है, ऐसे जीव भी शायिक सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनके आहार की सत्ता नहीं है। उद्वेलना करके लिए उद्वेलना वाला लिया गया, या जो अप्रमत्त संयत होकर भी आहार का बंधन नहीं करते, ऐसे वेदक समय दृष्टि भी शायिक समय को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आहार द्विक की सत्ता चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होने वाले के भी शायिक समय तो होता है। इसलिए एक शायिक समय को प्राप्त करने वाले जीवों के तीर्थंकर और आहार द्विक की सत्ता विकल्प से कही है, यानी भजनीय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आहारक बंधन और आहार संघात सो हुआ है, संघात आहारक शरीर के अविनाभावी होने से उनका ग्रहण हो ही जाता है, शेष कसन सुगम है। यानी उन दो प्रकृतियों की सत्ता की बात नहीं की जो बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म है, उन्हें जब हम आहार भी कहते तो वो दो भी उसमें आ गए, इंक्लूड है। वर्तमान में किन कर्मांशों को बांधता है इनकी विभाषा, यहाँ पर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध का अनुसंधान करना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम प्रकृति बंध का अनुसंधान करेंगे। अब यहाँ कौन से कर्म बांध रहा है उसकी बात है। तो कहते हैं पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वो वरण हुआ, ये छह दर्शन आवरण कौन से बांधता है लक्ष्मी? ये बांध रहा है छह, नहीं बांधता क्यों? दूसरे में,
पहले और दूसरे, पहले और दूसरे
में, दूसरे पहले में
होती है, नहीं दूसरे में,
दूसरे में
सॉरी सॉरी
तो पांच
निद्रा प्रतलार
निद्रा प्रतलार चार चक्षु अचक्षु
केवल दर्शन
दर्शनावरण तो पांच ज्ञानावरण छह दर्शनावरण साता वेदनिया क्योंकि अभी विशुद्धि हो रही है ना बोल वैसे तो ऐसा था कि विशुद्धि नहीं भी हुई हो
परंतु
अभी इस पोजीशन में वो साता बांध रहा है क्योंकि विशुद्ध परिणाम है। बारह कषाय ये बारह कषाय बांधने वाला है कौन सा गुणस्थान चल रहा होगा नितिन भाई बारह कषाय बांध रहा है छठा सब क्या कहते हैं बारह कषाय बांध रहा है चौथा वर्ष चौथा वाला अप्रत्यक्षण बांध रहे ना अभी उसकी विस्तृति नहीं हुई यानी चौथा वाला पुरुष वेद हास्य रति यहाँ भी इस पोजीशन में रति शोक नहीं बांध रहा है। भय जुगुप्सा ये भय जुगुप्सा दोनों बांधता है कि एक ही बांधता है मंदा भी वो आप वेद के उदय की बात करें ये तो ध्रुव बंदी है अनादि से बनता आया है आठवें गुणस्थान के अंत तक दोनों ही बंद है इसलिए दोनों का ही बंद है। देवगति पंचेंद्रिय जाति क्योंकि मनुष्य एक सपना करता है तो देवगति बांध रहा है अन्य जाति का बांधने का कोई सवाल नहीं समय दृष्टि है तो वैकिरेक शरीर क्योंकि देवगति के साथ तो वैकिरेक शरीर बंधेगी तेजस कारमान शरीर समचतुरस्त्र संस्थान वैकिरिक शरीर अंगोपा देवगति परायगना पूर्वी वर्ण गंध रस स्पर्श उसमें शुभ भी लगाओ तो चले अगुरु लघु चतुष्क कौन से है चतुष्क मंजू अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छवा इसको अगुरु लघु के चतुष्क कहेंगे। प्रशस्त विहाय गति त्रस आदर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदय यशस कीर्ति निर्माण सियात तीर्थंकर यानी किसी किसी को बंधेगी। उच्च गोत्र और पांच अंतराय इन प्रकृतियों का बंध करता है अवशेष प्रकृतियों का बंधन नहीं करता। ख्याल में आई बात सामान्य में चौथे गुणस्थान में अन्य भी प्रकृतियां बन सकती है असाता भी किसी के बंधेगी जिसकी जिसकी विच्छित्ति नहीं वो सारी बंधेगी ना। अभी मनुष्य है तो मनुष्य जो चौथे गुणस्थान वाला है तो उसकी कितनी प्रकृतियां नहीं बनती विच्छुति कितने की होगी मनुष्य के लिए 41 प्लस 6
47
परंतु इसके तो ये असाता वेदन नहीं बनेगी विशुद्धि परिणाम है इसलिए इसके विशिष्ट यहाँ शुभ प्रकृतियां ही बनेगी। यह असंयत समय दृष्टि की अपेक्षा का है बाद में बताया उन्होंने हमने पहले ही डिराइव किया था है ना। इसी प्रकार संयता संयत के भी कहना चाहिए संयता संयत को कौन सी नहीं बंधेगी अप्रत्याख्यान चार नहीं बंधेगी वहां पर इतनी विशेषता है यह अप्रत्याख्यान चतुष्क का बंधन नहीं करता। इसी प्रकार प्रमत्त संयत के भी कहना चाहिए उसकी क्या विशेषता होगी प्रत्याख्यान का भी नहीं बंद करता वो छह की बात नहीं ले रहे हैं उसमें तो अशुभ प्रकृति बांध ही नहीं रहा है
वो तो लिया है भी उसको।
इसी प्रकार अप्रमत्त संयत के भी कहना चाहिए इतनी विशेषता यह नाम कर्म की प्रकृतियों में आहार का स्याद बंद करता है ऐसा कहना चाहिए यह प्रकृति बंध का निर्देश है। प्रकृति बंध में निर्दिष्ट की गई इन्हीं प्रकृतियों की सत्कर्म रूप स्थिति से नीचे संख्यात गुणी हीन अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति का बंध करता है। सत्कर्म ने स्थिति का सत्व सत्ता में जो कर्म पड़ा है ऑलरेडी बंधा उसकी स्थिति कितनी है उसको कहेंगे स्थिति सत्कर्म या सत्व स्थिति स्थिति सत्व भी कहते हैं और यह है स्थिति बंद स्थिति सत्व यानी सत्ता का सत्ता की स्थिति और स्थिति बंद यानी नया बंधने वाले की स्थिति कितने ड्यूरेशन वाला कितनी स्थिति का कर्म बांधता है और सत्ता में कितना पड़ा है सत्ता में इतना सारा पड़ा हो तो उसके संख्यात्व भाग प्रमाण नया बंद होता है। विशुद्धि के काल में जितना ऑलरेडी सत्ता में है, सत्ता में भी घटाते आया है कांड घात द्वारा, और ये नया बंद कर रहा है वो तो संख्यात्व भाग प्रमाण। इसलिए यहाँ क्या वाक्य पढ़ा हमने, प्रकृति बंध में निर्दिष्ट की गई इन्हीं प्रकृतियों की, यानी जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है उनका स्थिति बंध कितना होता है ये बात बता रहे, क्योंकि यहाँ तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की बात बता रहे हैं। तो प्रकृति कौन सी बनती है बता रहे, अब जो बनती है उन्हीं की स्थिति बंधेगी, तो वो कितनी बनती है, तो कहते सत्कर्म रूप स्थिति से, यानी स्थिति
सत्ता
सत्व जो है, स्थिति सत्व वो जितना है उससे नीचे, यानी उससे कम, संख्यात गुणी हीन, यानी संख्यात वे भाग प्रमाण, फिर भी कितनी है, अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति का बंध करता है। सत्ता कितनी है, अंत कोड़ाकोड़ी, बंध कितना, अंत कोड़ाकोड़ी, फिर भी वो उसके संख्यात वे भाग प्रमाण होगा। यह स्थिति बंध का निर्देश है उन्हीं बंध प्रकृतियों में से। अब जो बंद रही है प्रकृतियां उनमें से अप्रशस्त प्रकृतियों का, अभी जो बंद रही ना अभी हमने ऊपर देखे उसमें से कुछ अप्रशस्त गिनाओ, नितिन बंद
चार बंद वाला,
आप क्या कहते हैं, अभी हमने बंधने वाली देखी ना ऊपर, उसमें से कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां गिनाओ। अरे ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण है, बारह कसा है,
गातियां सभी लेना पड़ेगा ना,
हास्य रति क्या है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, हास्य रति क्या है, मोनिये का भेद है ना, अप्रशस्त ही है
यहाँ पे, ये जब अर्ण गद्य स्पष्ट रहता तो वो तो शुभ ही बंधेगा,
वो शुभ बंधेगा,
तो यहाँ पे तो खाली
घाटिया चौक तो बंधेगा ही,
खाली घाटिया ही का लेना पड़ेगा, बाकी तो सभी शुभ ही है,
क्योंकि विशुद्धि है ना, तो अघाती की तो
शुभ
का डेफिनेशन ही है विशुद्धि का, कि साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध जिनके कारण से होते हैं उसको विशुद्धि कहेंगे। तो यहाँ तो साता वेदनी आदि ही बंधेगी, कहाँ पर,
अघाती,
पर घाती की सारी है तो अप्रशस्त ही है ना, और ये अपना विषय चल रहा है अभी कर्मकांड में, इसलिए प्रश्न पूछा, और ऊपर हमारे पास लिस्ट तैयार है ऊपर, हमें केवल पढ़कर उसमें से निर्णय करना है इसमें अप्रशस्त कौन सी है, हाँ पढ़ना पड़ता है। क्योंकि बाकी नाम कर्म की वगैरह जो देखी है वो तो सारी तो प्रशस्त वाली है। हाँ, नीचे हम पढ़ रहे थे, स्थिति बंध उन्हीं बंध प्रकृतियों में से, ये वाक्य पढ़ रही थी ना, अप्रशस्त प्रकृतियों का, अभी हमने जो देखा ज्ञानावरणादि जो अप्रशस्त है उनका अनंत गुणाहीन द्विस्थानीय अनुभाग बंध, अभी उनमें से जो कितने कषायन अप्रत्याख्यान का भी हो रहा है, प्रत्याख्यान का हो रहा है, वो तो सारे कैसे सर्वघाती है, तो सर्वघाती ने उसमें लता वाले तो हो गए नहीं, फिर भी वो द्विस्थानीय ने वो दारू वाले, दारू का अनंत बहुभाग वाले, वैसे
यानी
यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय अनुभाग बंद हो रहा है,
नहीं द्विस्थानीय दारू वाला है क्या, अस्थि वाला भी बंदेगा,
नहीं 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 द्विस्थानीय ने दारू वाला, अस्थि वाला ने त्रिस्थानीय, हाँ वो दो नाम नहीं लेना उसमें, सेकंड जो है ना उसको भी स्थानीय कहेंगे, क्या अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन भी स्थानीय अनुभाग बंद होता है, प्रति समय अनंत गुणाहीन होता है,
नहीं लता तो है
ही नहीं, लता उसमें है ही नहीं, जिनमें लता है ही नहीं उसकी बात नहीं लेना, अब संजोलन में लता वाली होगी तो उसको ले लेना, क्योंकि वो तो देशघाती उसमें सर्वघाती भी स्पर्धक होते हैं, तो उसमें दारू वाले भी बंधेगी लता वाले भी बंधेगी, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा चतुस्थानीय अनुभाग बंद होता है, तथा उन्हीं प्रकृतियों का अब प्रदेश बंध की बात है, अजगण्य अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, इतनी विशेषता है कि निद्रा प्रचला, आठ कषाय, हास्य रति, भय जुगुप्सा, देवगति चतुष्क, आहारक द्विक, समचतुरस्य संस्थान, प्रशस्त विहार गति, सुभग, सुस्वर, आदे और तीर्थंकर, इन प्रकृतियों का स्यात् उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। इस प्रकार बंध मार्गना समाप्त हुई। यानी ये जो कुछ ये जो प्रकृतियां बताई है उसमें कभी उत्कृष्ट प्रदेश बंध भी हो सकता है, अदरवाइज बाकी सब में अजगण्य अनुत्कृष्ट होता है। विशेषार्थ, शायिक सम्यक्त को उत्पन्न करने के सन्मुख हुआ जीव नियम से कर्म भूमि जो संगी पर्याप्त मनुष्य होता है, इसलिए एक तो इसके मनुष्य गति के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का बंधन नहीं होता, किसी भी मनुष्य को सम्यक्त में नहीं होता। दूसरे, यह विशुद्धि युक्त परिणाम वाला होता है, इसलिए इसके असातावेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस् कीर्ति का बंधन नहीं होता, जो अन्य चौथे गुणस्थान वाले को हो सकता है। इस अवस्था में आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होते, ये हमने वो भी देखी थी, जहाँ विशुद्धि अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होगा, यानी क्षपणा के काल में आयु का बंधन नहीं होगा, इसलिए मनुष्यायु और देवायु का भी बंधन नहीं होता। इस प्रकार असंयत समय दृष्टि के बंध योग्य 77 प्रकृतियों में से, ये अभी अपना विषय चला है शाम को बहुत विस्तार, 77 प्रकृतियां कौन कौन सी बनती हमने देखा था, 12 प्रकृतियों के कम हो जाने पर यहाँ कुल 65 प्रकृतियों का बंध होता है। मनुष्यायु समय दृष्टि को, हाँ, और ऐसे भी समय दृष्टि मनुष्य को मनुष्यायु बांधती नहीं है, यानी यहाँ वो कहने की जरूरत नहीं थी इसी बात में। शेष कथन सुगम है। कितनी प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, इस विभाषा का भंग उपशामक के समान है। कितनी प्रकृतियों का प्रवेशक होता है, इसकी विभाषा मूल प्रकृतियों का सबका प्रवेशक, यानी सभी कर्मों का उदय है, मूल प्रकृतियों का सबका उदय है। उत्तर प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, सम्यक्त्व, मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्र लघु चतुष्क, स्थिर अस्थिर। देखो उदय में दोनों को लिया, बंध में अस्थिर को नहीं लिया था, क्योंकि ये ध्रुवोदयी है, अभी अपना उदय का विषय नहीं चला है, परंतु हर समय दोनों का ही उदय चलता है, स्थिर अस्थिर दोनों को लिया, दोनों उसको भी ले लेंगे, होगा ना आगे स्थिर अस्थिर सुबह शुभ। हमने देखा ना 13वें गुणस्थान में तो उसकी उदय की स्थिति होती है, उदय की एक साथ दोनों उदय चल रहा है तब तक। निर्माण, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इनका नियम से प्रवेशक होता है। साता और असाता वेदनी, इनमें से अन्यतर का प्रवेश होता है, बंद कर रहा है साता का। असाता का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता, अच्छे मेरे को कुछ विचार कर, असाता के हृदय में क्षायिक समय तो होगा कि नहीं होगा, मेरे
होगा,
तो इसलिए साता असाता में अन्यतर का प्रवेश कहा। 4 कषाय, 3 वेद, 3 के बाद कॉमन ही चाहिए।
क्या कहते हैं नीच गोत्र वाला जो मनुष्य है,
क्या क्या
नीच गोत्र वाला मनुष्य है,
हाँ
वो सभ्यत्व प्राप्त कर सकता है,
हाँ
पर उसका नीच गोत्र का उदय होने के पश्चात वो कायिक समित्व नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च गोत्र बताया गया, उसके बारे में सोचते हैं।
कहाँ पर उच्च गोत्र बताया गया?
यहाँ पे ये बताया गया उदय रूप तो उच्च गोत्र ही है, उच्च गोत्र उदय में। तो नीच गोत्र वाला क्या कायिक समित्व प्राप्त नहीं कर सकते?
गोत्र बदलता है, पांचवे में तीरियन सोम का भी उच्च गोत्र हो जाता है।
गोत्र एक भाव के पलटता है इसे
ऊपर जो है स्थान।
अच्छा, मैं इसे सोच रहा था गोत्र का पलटता नहीं होता है, क्योंकि वो तो जन्म से ही होता है ना।
उदय की स्थिति यहाँ तो जन्म की अपेक्षा नहीं, मगर उसके जो बिहेवियर है उसकी अपेक्षा से ही
होता है। जो गोत्र होता है वो तो जन्म की अपेक्षा
नहीं, पर फिर भी तीरेंचो में भी नीचे गोत्र से उच्च गोत्र हो जाता है, हमने देखा है तीरेंचो में भी होता है। ये तो नारके और तीरेंचो के नीच गोत्र कहा जाता है, नारके और तीरेंचो के, और मनुष्य और मनुष्य में दोनों पाए जाते हैं, उच्च और नीच दोनों पाए जाते हैं मनुष्य में।
मनुष्य में दोनों पाए जाते
हैं। उदय की वो गति शुभ है आयु, फिर भी वहाँ जो शूद्र आदि जो होते हैं ना उनके तो नीच गोत्र कहे नहीं जाते, कुल की अपेक्षा उनको नीच गोत्र कहते हैं, यानी वहाँ की जैसे उनकी बिहेवियर होगी वैसे उनको कहेंगे।
क्योंकि नीच गोत्र के उदय की विच्छुति देश संयत में होती है, उदय की विच्छुति
देश संयत में है। उदय की विच्छुति यानी देश संयत का
उच्च गोत्र, अपेक्षा बात की है
नीच गोत्र हो सकता है। नीच गोत्र के उदय की विच्छुति के उदय उच्च गोत्र,
नीच गोत्र की देश संयत में,
क्योंकि तीरंज गति की वहन तक है,
इसीलिए तीरंज की अपेक्षा बात की है, इसीलिए तो पूछा क्योंकि ये उच्च गोत्र।
पर मनुष्यों के जो शूद्र जो है उनके तो मुनि तक की अवस्था होती है ना, हमने देखा ये म्लेंच वगैरह जो होते हैं ना, जो चक्रवर्ती के संबंध रखने वाले, हाँ डायरेक्टली नहीं, क्योंकि समय को तो होता है पर अभी क्षाई की बात नहीं। अभी यहाँ तो उच्च गोत्र बता दिया उन्होंने डायरेक्ट नियम से, यानी उच्च गोत्र वालों के होगा, अभी इतना समझ ले। हाँ यानी वो तो नीच गोत्र वाले को नहीं होगा।
नहीं नहीं मैंने पूछा
मेरे प्रश्न उठना स्वाभाविक है,
क्योंकि अभी मैं कुछ डिस्कस पे नहीं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ खाली।
अच्छा है देखो, चार कषाय, तीन वेद और दो युगल, प्रत्येक इनमें से अन्यतर का प्रवेश होता है। चार कषाय क्रोधमान माया लोग वाले चार कषाय लेना, तीन वेदों में से कोई एक वेद है, और दो युगल, दो युगल लेने हास्यरति, उदय की बात चल रही है। बंध में तो उन्होंने हास्यरति का ही बंध करना, भय और जुगुप्सा का त्याग प्रवेश होता है। ये आप जो कह रहे थे ना बंध के बारे में, वो उदय की बात, या तो भय का उदय है या जुगुप्सा है,
दोनों
का नहीं है, दोनों का भी है, उसमें चारों ही बातें हो। छह संस्थान और छह सहनन, प्रत्येक इनमें से अन्यतर का प्रवेश होता है, यानी किसी भी सहनन वाले को क्या समय को होता है, ये बात होती है, किसी भी संस्थान वाले को होता है, अरे किसी भी संस्थान वाले को अरियंत अवस्था भी
प्राप्त।
दो विहाय गति, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यशस्कीर्ति अयशस्कीर्ति, इनमें से अन्यतर एक एक का प्रवेशक होता है। तो अयशस्कीर्ति का प्रवेशक कौन होगा, कौन सा गुण, यानी कौन से गुणस्थान तक अयशस्कीर्ति का प्रवेशक, पांचवे तक,
चौथे और पांचवे के छठे में उसकी विच्छुति है,
विच्छुति चौथे में है उदय की, यशस कीर्ति के उदय की विच्छुति चौथे में है। निकालो तुम्हारी पत्रावली।
हाँ, चौथे में हमें बंद की
आप बंद, मुझे पता है। मैंने तो अभी उदय की विच्छुति कितने सालों से देखी भी नहीं है, फिर भी इतना याद है कि उदय की विच्छुति चौथे में। यहाँ जो प्रवेशक बताया है वो भी चौथे की अपेक्षा लेना, पांचवे छठे सातवें आगे के लिए अयशस्व कीर्ति का उदय ही नहीं होगा। यानी किसी के अयशस्व का उदय होगा तो चौथे तक ही होगा, आगे नहीं होगा। इतनी विशेषता है, मैंने आगे दिया है कि मैंने खाली के लिए। हाँ, संयता संयत और संयतों में सुभग आदय यशस कीर्ति का ही प्रवेशक होता है, क्योंकि जैसे अभी हमने अयश की बात की वैसे चौथे गुणस्थान के उदय की विच्छुति में दुर्भग अनादय और अयशस कीर्ति तीन को एक साथ लिया उदय में।
दुर्भग अनादय
चौथे में कितने की विच्छुति, उदय की विच्छुति सत्रह की है। आगे अब तीसरी सूत्र गाथा का कुछ विशेष कथन करेंगे। उक्त जीव के बंद और उदय की अपेक्षा कौन कौन कर्मांश क्षीण होते हैं, मैंने कौन सी प्रकृतियां नहीं बनती। वहां प्रकृति बंध में जिन प्रकृतियों का निर्देश किया है उनके सिवाय अन्य प्रकृतियों का बंध पहले ही विच्छिन्न हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि अभी इस विशुद्धि में उन प्रकृतियों का बंध यहाँ पर नहीं होगा। तथा जिन प्रकृतियों का प्रवेशक है उनके सिवाय शेष प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति हो जाती है, जिनका जिनका प्रवेशक है यानी उनका उनका उदय है, बाकी किसी का उदय नहीं है। स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक भी बंदर उदय विच्छित्ति का विचार उक्त कथन से ही गतार्थ है। यानी कितने स्थिति का बंद है, कितने स्थिति का उदय है, स्थिति का उदय में क्या लेना, कितने निषेकों में से उदीर्ण होकर उदय हो सकता है, उसको स्थिति उदय लेना, इसलिए इनका पुनः कथन नहीं करते। उक्त जीव अंतर कहाँ पर करता है और कहाँ किन किन कर्मों का क्षपक होता है इसकी विभाषा, तो कहते यहाँ दर्शन मोह की क्षपणा में अंतरकरण नहीं होता। अंतरकरण वाला जो प्रोसेस है मैं भी कहाँ कहाँ होता है, अंतर करने का कार्य कहाँ कहाँ होता है। हाँ, दर्शन मोह की उपशमना करने वाला और चारित्र मुनि में कहीं होता है, चारित्र मोह की उपशमना करने वाले और द्वितीय उपशम वाला, यानी वो सम्यक दर्शन मुख की उपशमना की और क्षापक श्रेणी में भी और उपशम श्रेणी में भी
दोनों श्रेणी
वहाँ भी अंदर करता है। क्षापक श्रेणी में भी अंतर तो होता ही है और जिसका उदय है उसकी उसकी एक एक की प्रथम स्थिति स्थापित करता जाता है और उसको नष्ट करता भी जाता है, संक्रमित करता जाता है। केवल दर्शन मोह की क्षपणा में अंतर नहीं करता, बाकी सब में करता है, इसलिए गाथा में वो प्रश्न पूछा गया था। तथा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का आगे क्षपक होगा, प्रश्न क्या पूछा था, किन किन कर्मों का क्षपक होगा और कहाँ होगा, तो कहते आगे होगा, यानी अभी नहीं होगा, अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद होगा। विशेषा दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव वेदक सम्य दृष्टि होता है, इसके क्षायिक सम्यक्त्व के उत्पन्न होते होने के प्रथम समय के पूर्व तक वेदक सम्यक्त्व बना रहता है। पूर्व तक यानी वो कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय तक वेदक सम्य दृष्टि कहेंगे। और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों का क्षय होने पर होती है, इसलिए दर्शन मुख की क्षपणा में अंतरकरण का निषेध किया। टोटल क्षय होने के बाद उसको हम क्षायिक समय दृष्टि कहेंगे। शेष कथन सुगम। उक्त जीव किस स्थिति वाले कर्मों का और किन अनुभागों में स्थित कर्मों का अपवर्तन करके किस स्थान को प्राप्त करता है, इस चौथी गाथा की अर्थ विभाषा उपशामक के समान करनी चाहिए। यानी वहाँ पहले तो अनुस्थिति ज्यादा थी, वो संख्यात विभाग हो जाती है वगैरह वगैरह। अनुभाग में तो अप्रशस्तों का घट जाएगा, प्रशस्तों का बढ़ जाएगा। इस प्रकार इन चार गाथाओं की अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विभाषा अर्थात विशेष व्याख्यान करके तदनंतर प्रकृत प्ररूपणा को अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर आरंभ करनी चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए उत्तर सूत्र का अवतार देते हैं। यानी अभी तक अधः प्रवृत्तकरण की बात थी, वहां तक क्या क्या बात हो रही है, अब यहां से अपूर्वकरण की बात चालू हो जाती है। एदाओ चत्तारी सुप्तगाथाओ विहाय स्थियून अपूर्वकरण परम समय आढ़वेयो वो। इन चार सूत्र गाथाओं का विशेष व्याख्यान करके अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रकृत प्ररूपणा का आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार अनंतर पूर्व कही गई इन चार सूत्र गाथाओं का विशेष व्याख्यान करके तदनंतर अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थितिघात और अनुभाग घात आदि लक्षण वाले, आदि में क्या क्या लेना लक्ष्मी? हाँ, ये स्थिति घात है ना, स्थिति कांडक के द्वारा घात होता है, स्थिति कांडक घात। अनुभाग कांडक घात किसमें होगा? अप्रशस्त में होगा। और गुण संक्रमण गुणशेख आदि लक्षण वाले प्रकृत प्ररूपणा प्रबंध का आरंभ करना चाहिए, यह सूत्रार्थ का संग्रह है। शंका। अध प्रवृत्तकरण में ही स्थितिघात और अनुभाग घात आदि लक्षण वाले प्रकृत प्ररूपणा प्रबंध का क्यों नहीं आरंभ किया जाता, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध प्रवृत्तकरण परिणामों में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात रूप शक्ति का अभाव है। कांडक रूप से घात करने की बात अध प्रवृत्ति में नहीं बन सकती, वहां विशुद्धि उतनी नहीं है, भले वो अनंत गुणी बढ़ रही है। अब इसी अर्थ के स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र आया है। अधापवत्त करणे ताव नत्थी स्थिति घादो व अनुभाग घादो व गुण शेरी व गुण संकमो व। अध प्रवृत्तकरण में स्थिति घात अनुभाग घात गुण श्रेणी और गुण संक्रम नहीं होते, वो यह अपूर्वकरण से शुरू हो जाते, यह सूत्र गतार्थ है। नवरी विसोही अनंत गुणाए वड्डदी। नवरी यानी फिर भी क्या विशेषता, वहाँ अध प्रवृत्तकरण में विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ रही। सुहाणम कम्भमसाणम अनंत गुण वड्डी बंदो, यानी शुभ जो प्रकृतियां है प्रशस्त उसके अनंत गुणा वृद्धि वाला अनुभाग बनता है। असुहाणम कम्माणम अनंत गुण हानि बंदो, यानी अप्रशस्त कर्म अनंत गुणाहीन होकर बनते हैं, नया बंध की बात है। बंधे पुण्य पलिदोमस असंख्य, बंधे पुण्य पलिदोमस संख्य यदि भागे न हायदि, आयदी की ही यदि आयदी यानी घटकर बनता है। इतनी विशेषता है कि वह प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। शुभ कर्मांशों का अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए बंध होता है, वंद हुआ है, बंध होता है। ये हिंदियों की क्या स्पेशलिटी, जहाँ व चाहिए वहाँ ब, जहाँ ब चाहिए वहाँ व। अशुभ कर्मों का अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी हानि को लिए हुए बंध होता है, तथा अंतर्मुहूर्त काल तक होने वाले एक एक स्थितिबंध के पूर्ण होने पर पल्लवों के संख्यात विभाग कम स्थितिबंध करता है। हाँ यदि यानी घटता है, पल्ल के संख्यात विभाग से घटता है उतना कम स्थितिबंध होता है। उक्त कथन का यह तात्पर्य है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अधप्रवृत्तरण में स्थित जीव साता वेदनी आदि शुभ कर्मों का अनंत गुणी वृद्धि को लिए हुए अनुभाग बंद करता है। पांच ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों का अन्य भी जो अशुभ बताए हैं अनंत गुणी हानि रूप से अनुभाग बंद का अपवर्तन करता है तथा अन्य अंतर्मूर्त काल संबंधी स्थिति बंध के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति बंध का आरंभ करता हुआ, यानी स्थिति बंध का जो प्रमाण है जो बंधना चालू करता है अंतर्मूर्त तक उतना ही बनता है, फिर उसमें कटौती हो जाती है। कितनी होती है तो पल्लवों के संख्यात विभाग प्रमाण स्थिति को घटाकर बांधता है, क्योंकि विशुद्ध रूप परिणाम स्थितिबंध की वृद्धि के विरुद्ध स्वभाव वाला होता है। ये किसको बांधने की बात चल रही है, दर्शन मुनि को? यहाँ जो बंध रहे उसकी बात, दर्शन मुनि को तो बंधे गए हैं। दर्शन मुनि की क्षपना हो रही है, उसमें कोई बंध नहीं है, बंध अन्य कर्मों का चल रहा है। विशेषण अध प्रवृत्त करण में यद्यपि स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात गुण श्रेणी रचना और गुण संक्रम स्वरूप कार्य विशेष नहीं होते, तथापि वहां परिणामों में प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होने से सातादि यानी साता वेदनीय आदि शुभ कर्मों का प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि स्वरूप और ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों का प्रति समय अनंत गुणी हानि स्वरूप अनुभाग बंद करता है तथा अधप्रवृत्तकरण के काल के संख्यात वे भाग प्रमाण प्रथम अंतर्मूर्त में प्रति समय जितना स्थिति बंद करता है दूसरे अंतर्मूर्त में उसकी अपेक्षा पल्लवों का संख्यात वा भाग कम स्थिति बंद करता है। इस प्रकार यह क्रिया अधप्रवृत्तकरण में बराबर चालू रहती है। ये तो समझ में आई ना बात, अधप्रवृत्तकरण अभी अभी हमने उपशमना में भी विस्तार से देखी थी ये सारी बात। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा अधप्रवृत्तकरण विषयक फल विशेष को दिखलाकर यानी अधप्रवृत्तकरण में क्या क्या बातें होती है परिणाम स्वरूप उसका फल बताया, अब तद विषयक प्ररूपणा का उपसंहार करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। ऐसा अधप्रवृत्त करणे परूपणा, यह अधप्रवृत्त करण विषयक प्ररूपणा है। यह अनंतर कही गई प्ररूपणा, अनंतर ने अभी अभी पूर्व में कही गई प्ररूपणा अधप्रवृत्त करण विषयक कही गई है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इसका उपसंहार कर मैंने अभी समेट लिया, उसको विषय हो गया। अब अपूर्व करण विषयक प्ररूपणा प्रबंध का आरंभ करते हुए यह सूत्र कहते हैं। इनकी ऐसी पद्धति ना, जो आरंभ करने वाले उसका भी नाम बताएंगे, जब वो विषय समझता होता है तो यह ऐसे ऐसी की प्ररूपणा थी ऐसा बताकर उसको नए विषय को ले लेते। अपूर्व करण से पढ़म समय दोम्नम जीवाणम थिदिसंत कम्मादो थिदिसंत कम्मम तुल्यम व विशेषायम व संख्यज गुणम वा स्थितिखंडयादो भी स्थितिखंडयम दोन्नम जीवाणम तुल्यम व विशेषायम व संख्यज गुणम वा। अपूर्वकरण के पहले समय की बात करते हैं तो अपूर्वकरण के प्रथम समय में दो जीवों में से किसी एक के स्थिति कर्म सत्कर्म से दूसरे जीव का स्थिति सत्कर्म तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यात गुणा भी होता है, यानी स्थिति में यहाँ डिफरेंस हो सकता है। इसी प्रकार दो जीवों में से किसी एक के स्थिति कांडक से दूसरे जीव का स्थिति कांड तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यात गुना भी होता है। जितनी स्थिति उस मात्रा में स्थिति कांड का प्रमाण होता है। यथा जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है ऐसे दो जीव एक साथ दर्शनों की क्षपना का आरंभ कर अधप्रवृत्तकरण के काल को बिताकर अपूर्वकरण के पहले प्रथम समय में वर्तमान रूप से यहाँ विवक्षित करने चाहिए। अपूर्वकरण का जो पहला समय ऐसे अन्य अन्य जीवों की बात यहाँ हो रही है। इस प्रकार विवक्षित किए गए उन दोनों जीवों में से किसी एक के सत्कर्म स्थिति सत्कर्म से दूसरे जीव का स्थिति सत्कर्म सदृश होकर भी प्राप्त होता है तथा विसदृश होकर भी प्राप्त होता है। उनके जो सत्ता में स्थिति पड़ी है कर्मों की वो समान भी हो सकती है असमान भी हो सकती है। असमान यानी क्या कहेंगे, एक का ज्यादा एक का कम है, तो ज्यादा तो कितना ज्यादा हो सकता है, तो कहते विसदृश होने पर संख्यात भाग वृद्धि रूप से या असंख्यात भाग वृद्धि रूप से विशेष अधिक होकर भी प्राप्त होता है। थोड़ा सा अधिक हुआ ना, असंख्यात वा भाग अधिक या संख्यात वा भाग अधिक तथा संख्यात गुणा अधिक होकर भी प्राप्त होता है, उससे संख्यात गुणा अधिक भी हो सकता है। इसी प्रकार स्थिति कांडक के विषय में भी कथन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति सत्कर्म के अनुसार ही तद विषय स्थिति कांडकों की प्रवृत्ति होना न्याय प्राप्त है। जहाँ स्थिति ज्यादा होगी तो कांडक भी बड़ा हो जाएगा। स्थिति सत्कर्म के सदृश होने पर तद विषय स्थिति कांडक भी सदृश ही होते, अभी ही लगाए, जिनकी स्थिति समान है उनके कांडक भी समान है। विशेष अधिक स्थिति सत्कर्म के होने पर स्थिति कांडक भी विशेष अधिक होते हैं तथा संख्यात गुणे स्थिति सत्कर्म के होने पर स्थिति कांडक भी संख्यात गुणे ही होते हैं, यह उक्त कथन का भावार्थ है।
तो यहाँ पे स्थिति की अपेक्षा जो असमानता बताई है वहाँ पे परिणाम की समानता हो जाती है, इसे बताना है। तो स्थिति की समानता है वहाँ पे परिणाम की भी समानता हो जाएगी।
परिणाम की समानता तो अनिवृत्तिकरण में होती
है। नहीं, यहाँ पे ये कांडक का प्रमाण भी समान होता है।
ये पूछ रहे हैं दो स्थिति सत्कर्मों का सदृशपना कैसे बन सकता है, इसका उत्तर अभी आ रहा है। प्रश्न आपका यही है।
हाँ।
देखो शंका, दो स्थिति सत्कर्मों का सदृशपना कैसे बन सकता है, उसका समाधान कहते कि एक साथ ही प्रथम सम्यक को ग्रहण कर यानी प्रथम उपशम सम्यक को प्राप्त किया, पुनः एक समय ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर वो भी एक साथ की, दर्शनों की क्षपणा के लिए उद्यत हुए दो जीव अपूर्वकरण के प्रथम समय में दिखाई देते हैं, उन दोनों का स्थिति सत्कर्म परस्पर सदृश होता है। साथ में किया और ये भी साथ में किया, फिर भी वहाँ समान होकर ये उपशामक वाले ने समान की थी, फिर यहाँ भी अनंतानुबंध यानी आगे पीछे करेंगे तो कम ज्यादा हो सकती है ना, परंतु उन्हें एक साथ किया है ये बात बताएं।
तो संख्या गुणी कैसी होगी यहाँ पे जो स्थिति की अपेक्षा जो आगे बात बताया ना।
हाँ, वो कहेंगे ना, अभी तो शुरुआत की हमने। तथा स्थिति कांडक भी सदृश ही होते क्योंकि उनके विसदृश होने का कारण नहीं पाया जाता। अभी कहेंगे ना विशेष अधिक क्यों है, संख्या गुणा क्यों है, वही तो बताने जा रहे थे, हमने पढ़ा कहाँ है। देखो विशेष अधिक पने के कारण का कथन करते हैं। यथा दो विवक्षित जीवों में से एक जीव दो 66 सागरोपम काल तक परिभ्रमण कर दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ तथा दूसरा एक दो 66 सागरोपम काल तक परिभ्रमण किए बिना दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ
तुरंत
ही। एक अंतर्मूर्त में भी हो सकता है ना, वेद समय को प्राप्त करने का इस प्रकार उद्यत हुए उक्त दोनों जीवों के अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थिति सत्कर्म में विसदृश होते हैं और स्थिति कांडक भी विसदृश होते हैं, क्योंकि दो छाछ सागरोपम काल तक भ्रमण करने वाले जीव के स्थिति सत्कर्म से दूसरे जीव का स्थिति सत्कर्म सत्कम हुआ है। दो छाछ सागरोपम काल के समय प्रमाण निषेकों की अपेक्षा विशेष अधिक देखा जाता है।
अच्छा, संज्ञात गुण का भी क्वेश्चन आ रही है।
देखो यह क्या कहने सके, दो छाछ सागर में उसने क्या किया, उसने निषेक गल गए, नया बंध होता था क्या उस काल में दर्शन होने का? पहले मिथ्यात्व अवस्था में बंद किया, बाद में समय दृष्टि हुआ, वैदिक समय दृष्टि हुआ है, छाछ सागर तक समय दृष्टि रहा, तो मिथ्यात्व तो जितना बांध के आया था वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर था, उतना तो गल गया उसको। कितना गला है? दो छाछ सागर इतना गला है। किसमें से? अंत कोड़ा कोड़ी सागर में से दो छाछ सागर चला गया। तो कितना भाग चला गया? संख्या तो भाग है बात है, वो तो कोड़ा कोड़ी में है और ये कितना है?
संख्या
दो छाछ, तो संख्या तो भाग कम, तो जिसने गलाया है उसका कम है, जिसने तुरंत क्षपणा की उसका थोड़ा ज्यादा है, विशेष अधिक। यह उत्कृष्ट पक्ष की अपेक्षा विशेष अधिक पने की प्ररूपना। अब इसमें लगाओ दो छाछ मत लगाओ, एक छाछ लगाओ,
कभी संख्या तो आगे
खाली सागर तक ही लगाओ, एक सागर की बात की है, किसी ने तरंग किया, अभी उसमें कितने वेरिएशन हो गए? यहाँ यह मैक्सिमम वाला लेके बताया है, मैक्सिमम वाला लेके बताया, यहाँ लिखा है उत्कृष्ट पक्ष की अपेक्षा विशेष अधिकपना की प्ररूपणा है, अन्यथा एक समय अधिक आदि से लेकर दो छाछ सागरोपम काल तक के जितने समय होते हैं उतने सब विकल्प प्राप्त होते हैं, ऐसा कहना यानी वो वेदक समय में कितने काल तक रहा, किसी ने अंतर्मुख रहा, किसी का एक समय ज्यादा रहा, किसी का दो समय ज्यादा रहा, तीन समय, अभी दो छाछ सागर तक उसको चढ़ा हुआ। इसी प्रकार तदनुसार स्थिति कांडक का भी विशेष अधिकपना जान लेना चाहिए, अथवा अब ये संख्यात गुणा की बात करें, दो जीवों में से एक जीव उत्तम श्रेणी पर चढ़कर तथा नीचे उतरकर अंतर्मूर्त काल तक ठहरा, पुनः अन्य एक जीव बाद में उत्तम श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतरा, इस प्रकार उतर कर ये दोनों जीव एक काल में ही दर्शन मुखी सपना का आरंभ कर अपूर्वकरण के प्रथम समय में अवस्थित हुए। इस प्रकार अवस्थित हुए इन दोनों में से पहले जीव के स्थिति सत्कर्म से पिछले जीव का स्थिति सत्कर्म विशेष अधिक होता है, क्योंकि पहले जीव के स्थिति सत्कर्म की अधस्थिति अंतर्मूर्त काल प्रमाण अधिक गल गई है। इसी प्रकार एक जीव के स्थिति कांडक से दूसरे जीव के स्थिति कांडक की भी उसी प्रकार योजना कर लेनी है। ये विशेष अधिकपना की बात कर रहे हैं, अथवा कहके पहले विशेष अधिक यानी वेदक समय में कितना काल बिताया उसकी अपेक्षा बताई। अब दोनों ने उक्षम श्रेणी चढ़ के उतरी थी, परंतु उक्षम श्रेणी उतर कर किसी ने जल्दी सपना की और किसी ने थोड़े काल के बाद, तो उतने उसके अधिक गल गए। विशेषा दर्शन मुखी क्षपणा करने वाले जो दो जीव एक साथ अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रवेश करते हैं, उन दोनों के परस्पर स्थिति सत्कर्म समान या असमान कैसे होते हैं, इस तथ्य का यहाँ विचार करते हुए सदृश पने का और विसदृश होकर भी विशेष अधिक पने का संयुक्तिक विचार किया गया, यानी विसदृश है परंतु वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है, विशेष अधिक। सदृश पने का विचार करते हुए जो कुछ बताया है उसका आशय यह है, ऐसे दो जीव लोग जिन्होंने एक साथ प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त कर अनंतर एक साथ ही अनंतानुबंधी चतुष्ट की विसंज्ञा की। समझो पुनः वे ही दोनों जीव एक साथ दर्शनों की सपना के लिए उद्यत होकर क्रम से एक साथ ही अपूर्व करण में प्रवेश करते हैं, तो उन दोनों के स्थिति सत्कर्म सदृश ही होते ही लगाए। विसदृशपणे का स्पष्टीकरण करते हुए जो कुछ बताया है उसका एक प्रकार तो यह है कि ऐसे दो जीव लो जिन्होंने दर्शन मौखिक क्षपणा से पूर्व अन्य सब कार्य तो काल भेद से किए हैं, किंतु दर्शन मौखिक क्षपणा का प्रारंभ करने में यदि समय भेद नहीं हुआ तो उनके अपूर्वकरण के प्रथम समय में एक साथ प्रवेश करने पर भी स्थिति सत्कर्म में असमानता बन जाती है, क्योंकि पहले उनके किसी ने अधिक लंबा काल बिताया है, 2-4 साल या किसी ने उत्सम शनि करके उतरिए वगैरह। इसे स्पष्ट करते हुए जयधवला में बतलाया है कि एक जीव उत्सम श्रेणी पर चढ़कर उतरा तथा ठहरा रहा, पुनः दूसरा जीव अंतर्मूर्त बाद उत्सम श्रेणी पर चढ़कर उतरा। इसके बाद इन दोनों ने दर्शन मौखिक क्षपणा का प्रारंभ कर एक साथ अपूर्व करण में प्रवेश किया, तो उनके स्थिति सत्कर्म में नियम से विसदृशता होगी। इन दोनों जीवों में समान क्रिया करने में जितने काल का बीच में अंतर हुआ, पहले जीव का स्थिति सत्कर्म दूसरे जीव की अपेक्षा उतना ही अधिक होगा। मान लेते बीच में अंतर मूर्त तो उसका ठहरना पड़ा तो उतने काल में उतने नीचे उतने गल गए, यह एक प्रकार। दूसरा प्रकार, 2-6 सागरोपम काल तक एक जीव के परिभ्रमण करने और दूसरे जीव के परिभ्रमण न करने की अपेक्षा बतलाया है। इस प्रकार नाना जीवों के स्थिति सत्कर्म में विसदृशता बन जाने से दर्शन मोह के क्षपणों क्षपकों के अपूर्वकरण के प्रथम समय में भी विसदृशता बन जाती है, भले ही उन्होंने एक साथ अपूर्वकरण में प्रवेश किया हो। ये बात यहाँ खास करके बताना था। अंतर्मूर्त ज्यादा, अंतर्मूर्त प्रमाण ज्यादा है। एक साथ उन्होंने उपशमना की थी, एक साथ तो भी वहाँ एक एक झटके में वो तो कम हो जाते हैं ना, वहाँ पर उसमें भी जो कार्य हुए थे वहाँ समान हुई थी ना। हाँ
तो ये एक बात तो एक पक्की हो जाती है, क्योंकि जो प्रथमोत्तम सूर्य तो करता है उसके अंत में प्रथमोत्तम के काल में जितना घात होता है सभी का समान होकर स्थिति समान हो जाती है।
हाँ वही तो घटित होता है ना।
हाँ
अनिवृत्तिकरण में आता है
समान परिणाम के।
वहाँ ये भी बात बताइए कि पहले अपूर्वकरण के पहले समय में कांडक और स्थिति असमान रहती है।
हाँ।
बाद में समान
समान हो जाती है,
इसीलिए कांडक छोटा बड़ा होता है।
हाँ
जिसकी स्थिति ज्यादा है उसका कांडक बड़ा होकर स्थिति समान हो जाएगी सबकी। बात पहला कांडक अलग अलग असमान है, बाद में वो समानता को प्राप्त हो जाता है। अभी तो हमने संख्यात गुणा की बात नहीं की थी, वो बता रहे हैं। अब संख्यात गुणा स्थिति सत्कर्म और स्थिति कांडक संभव है इस विषय को दिखलाने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। समझा वह जैसे सदृश स्थिति सत्कर्म और विशेष अधिक स्थिति सत्कर्म सुगम है, इसलिए उनका उल्लंघन कर संख्यात गुणे स्थिति सत्कर्म और स्थिति कांडक विषय की यह पृच्छा सूत्र कहा गया जानना चाहिए। उन्होंने भले बीच में बता दिया परंतु मूल सूत्र में केवल संख्यात गुणा की चर्चा। दोन्नम जीवाणम एको कसाय उसामे यूण क्षीण दंशन मोहनीयो जागर, एको कसाय अणुवसामे यूण क्षीण दंशन मोहनीयो जागर, जो अणुवसामे यूण क्षीण दंशन मोहनीयो जादो तस्त स्थिति संतकम्मम संख्येज गुण। मैंने एक ने कसाय की उपशमना करके वो बाद में क्षपना की है,
और
एक ने तो ऐसे डायरेक्ट देखा। दो जीवों में से एक जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर और कषायों का उपशमन कर दर्शन मुखी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है, और दूसरा जीव कषायों का उपशम किए बिना दर्शन मुखी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है। इनमें से जो जीव कषायों का उपशम किए बिना क्षीण दर्शन मुनि हुआ है, उसका स्थिति सत्कर्मा प्रथम जीव की अपेक्षा संख्यात गुणा अधिक होता है, क्योंकि कषायों की उपशमना में भी वहां पर भी स्थिति कांड हो गए थे, तो वहां भी स्थिति घट गई। यहाँ पर जिसका भविष्य में दर्शन मुनि क्षीण होगा, ऐसे अपूर्वकरण जीव की ही क्षीण दर्शन मोह संज्ञा है, ऐसा समझकर सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा दो जीवों में से एक जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा स्थिति के संख्यात बहुभाग का घात कर और संख्यात वे भाग को शेष रखकर अनंतर क्रम से कषायों का उपशम कर तथा नीचे उतर कर अंतर्मूर्त काल द्वारा विशुद्धि को पूर्व कर तथा दर्शन मुनि की क्षपणा का प्रारंभ कर भविष्य में जिसका दर्शन मुनि क्षीण होगा, ऐसा अपूर्व करण परिणाम वाला हो गया। यानी उपशम श्रेणी चढ़ी है और अंतर्मूर्त में क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है, तथा अन्य एक जीव कषायों का उपशम किए बिना दर्शन मुनि की क्षपणा का आरंभ कर जिसका अंतर्मूर्त में दर्शन मुनि का क्षय होगा, ऐसा अपूर्वकरण परिणाम वाला हो गया। दोनों का समय एक लिया। इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम समय में विद्यमान इन दोनों में से जो कषायों का उपशम किए बिना दर्शनों के क्षय को उत्पन्न हुई पर्याय के अभिमुख हुआ है, यानी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है, उसका स्थिति सत्कर्म दूसरे के स्थिति सत्कर्म को देखते हुए संख्यात गुणा पाया जाता है, क्योंकि उपशम श्रेणी में अपूर्वकरण आदि परिणामों के द्वारा पूर्व में उसकी स्थिति का घात नहीं हुआ है। इसी प्रकार उसके स्थिति कांडक भी संख्यात गुणा कहना चाहिए। इस प्रकार इसका कथन कर इस स्थल पर अन्य तथ्य का भी विचार करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं, जो कल देखेंगे हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो तो वाणी मस्तक नमो सदा दे अश्विन
नमोरियंतानं नमोचितानं नमायानं नमोवज्रानं नमोलोय सप्तसावनं नमोरियंतानं नमोचितानं नमायानं नमोवज्रानं नमोलोय सप्तसावनं नमोरियंतानं नमोचितानं नमायानं नमोवज्रानं नमोलोय सप्तसावनं।